नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार पर बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज केंद्रीय बोर्ड की बैठक होगी। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। नई सरकार के गठन के प्रयास जारी और पर्थ में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी का फैसला किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी प्रेक्षक एके एंटनी ने कल रात भोपाल में उनके नाम की घोषणा की। कल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर लंबी बैठकों के दौर के बाद ये फैसला किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक कमलनाथ ने अब तक सड़क परिवहन, संसदीय कार्य और वाणिज्य मंत्रालय सहित केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 9 बार चुने गए हैं। उन्हें इस साल मई में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और हाल ही के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी 15 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे 72 साल के कमलनाथ ने दून स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर डिग्री अर्जित की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
हालांकि कांग्रेस ने अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधायक दल के नेता के नाम पर अब भी असमंजस बना हुआ है।
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक कल दिन भर अपने अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने की खबर आने का इंतजार करते रहे। इस बारे में निर्णय में देरी से नाराज युवाओं ने कल टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में प्रदर्शन किया और यातायात बाधित किया। इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट कर जनता से शांत रहने की अपील की। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा कब होगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
तेलंगाना में मोहम्मद महमूद अली राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में अभी तक शामिल किए गए एकमात्र मंत्री महमूद अली को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी है। उधर मिजोरम में श्री जोराम थंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार को कल शपथ दिलाई जाएगी। आइजोल में श्री जोराम थंगा के नेतृत्व में पार्टी शिष्टमंडल की राजभवन में राज्यपाल के राजशेखरन के साथ बैठक में यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारिक गतिविधियों में आरंभ से अंत तक की प्रक्रिया को सुगम बनाने और कारोबारी नीतियों को सुचारू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबार करने की रैंकिंग में सुधार आएगा बल्कि छोटे कारोबार का अस्तित्व और आम आदमी का जीवन भी आसान होगा। कारोबार को सुगम बनाने के उपायों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उभरती और जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आज नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मुख्य रूप से बैंक की निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीय बोर्ड की भूमिका पर चर्चा होने की आशा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आगामी आरबीआई बैठक के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा में से एक प्रशासनिक मुद्दा यानी आरबीआई के निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीय बोर्ड की भूमिका होने की संभावना है। वर्तमान संरचना में केंद्रीय बोर्ड सलाहकार की भूमिका निभाता है, लेकिन इस बात की मांग बढ़ती जा रही है कि बोर्ड को केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिक भागीदारी दी जाए। इसके अलावा आज की महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई का जायजा लिए जाने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर हिंसा मामले में और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को जेल भेजा गया है। कल सौरभ पायल और रमेश को गिरफ्तार किया गया। प्रमुख आरोपी योगेश राज अब भी फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के प्रयासों में लगी है। इस बीच बुलंदशहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अदालत ने हिंसा की इस घटना में आरोपी सभी फरार लोगों के नाम गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की छानबीन विशेष जांच दल कर रहा है। इस महीने की 3 तारीख को बुलंदशहर में हुई हिंसा में सियाना के पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और स्थानीय युवक सुमित की मौत हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पापा, कल मैं 15 की हो जाऊंगी, कहीं ले चलो।
हाँ हाँ, चलेंगे ना पोस्ट ऑफिस।
मेरा मतलब घुमाने ले जाने से था।
घूमने भी जाएंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस पहले जाएंगे।
लेकिन क्यों?
5 या 15 की उम्र पर आधार में बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने होते हैं। ये अपडेट पोस्ट ऑफिस या बैंक के आधार केंद्र पर होता है।
और उसके बाद मूवी।
हाँ हाँ, उसके बाद मूवी।
आधार केंद्रों की लिस्ट UIDAI.gov.in पर या 1947 पर कॉल करके मिलेगी। मेरा आधार, मेरी पहचान।
अरे भाई तुषार, व्हाट्स हैपनिंग?
अरे भाई, अपने बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका फायदा बाद में हमें ही तो मिलेगा।
अरे मुझे भी बता यार ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में।
बस मेरी तरह अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा कर दें।
उससे क्या होगा भाई?
तुझे पता है, हमारे ही इनकम टैक्स से तो विकास को नई गति मिलती है, और जो हमारे गली मोहल्ले से लेकर देश के कोने कोने तक फैलती है, और उसका फायदा किसको मिलता है? हमें ही तो।
ये बात तो है भाई, ईमानदारी से दिए इनकम टैक्स का फायदा हमें ही तो मिलता है।
तो आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर टैक्स देकर करें अपना योगदान। याद रखें, 15 दिसंबर 2018 एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त को जमा करने की अंतिम तारीख है।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को संसद भंग करने के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कल सर्वसम्मत फैसले में कहा कि 4.5 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल से पहले संसद भंग नहीं की जा सकती। एक रिपोर्ट।
उच्चतम न्यायालय द्वारा कल संसद भंग करने के फैसले को गलत ठहराए जाने के बाद अब सबकी नजर उसके आज के फैसले पर है, जिसमें राजपक्षे ने एक निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने उनके मंत्रिमंडल को काम करने से रोक दिया था। आशा है कि आज के फैसले के बाद श्रीलंका में एक नई सरकार का गठन होगा और हफ्तों से चल रहे राजनीतिक गतिरोध को विराम मिलेगा। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि रनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उनके राष्ट्रपति के साथ मतभेद क्या दूर होंगे और वर्तमान परिस्थितियों में नई सरकार के स्थायित्व को बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में संघर्ष के मुद्दे पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और 6 महीने के लिए बढ़ा दिए हैं। अजोव समुद्री झड़प के मुद्दे पर यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यूरोपीय संघ ने यह फैसला लिया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ब्रसेल्स में शिखर बैठक से ट्वीट किया कि मिन्स्क समझौते को लागू करने में कोई प्रगति न होने के कारण यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ ने सबसे पहले जुलाई 2014 में रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक ऋण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $1,840 खरब तक पहुंच गया है। इसमें आधे से भी अधिक ऋण अमरीका, चीन और जापान पर हैं। ऋण की ये राशि 2017 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 225% के बराबर है। दुनिया के सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश वे हैं जो सबसे अधिक धनी देश हैं। अमरीकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर अमरीका के पत्रकार जमाल खशोगजी की हत्या के मामले में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया है। सीनेट से कल सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव को अब प्रतिनिधि सभा को भेजा जाएगा। पत्रकार जमाल खशोगजी की इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर को हत्या हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद म्यांमा की सफल सरकारी यात्रा के बाद आज दोपहर स्वदेश लौट आएंगे। उनके प्रवास के दौरान राजनीतिक मुद्दों, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों, व्यापार और विकास में सहयोग और जनता के बीच संपर्क समेत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री कोविंद ने म्यांमा में राजनीतिक आम सहमति और आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयासों में भारत की ओर से हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही। राष्ट्रपति की यात्रा इस मायने में महत्वपूर्ण थी कि म्यांमा में शांति और समृद्धि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और देश के बड़े भूभाग की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाएं ताकि संसद का कामकाज सुचारू ढंग से चलाया जा सके। नई दिल्ली में श्री नायडू ने कहा कि आचार संहिता से संसद और सांसदों की गरिमा बढ़ेगी तथा इस पवित्र संस्थान पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा। उन्होंने कुछ सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार से संसद का कामकाज बाधित होने पर चिंता व्यक्त की। श्री नायडू ने इस अवसर पर डॉ मुरली मनोहर जोशी और श्री शरद पवार को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा 7 सांसदों को भी सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। कल नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नई पहल के तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय कोष से इसके लिए 11 अरब 51 करोड़ रूपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। पर्थ में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। एडिलेड में पहला टेस्ट मैच भारत ने 31 रन से जीता था। भारत ने एशिया क्रिकेट काउंसिल एमर्जिंग टीम कप के फाइनल में जगह बना ली है। कल कोलंबो में पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया। फाइनल कल खेला जाएगा। चीन में वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला अमरीका की झांग बेविन से होगा। सिंधु ने कल ताइवान की जू यिंग को 14-21, 21-16, 21-18 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में आज भारत के समीर वर्मा का सामना थाईलैंड के कैंटाफोन से होगा। भुवनेश्वर में विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में कल नीदरलैंड्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और बेल्जियम का इंग्लैंड से होगा। कल क्वार्टर फाइनल मैचों में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-1 से हराया और इतने ही अंतर से बेल्जियम ने जर्मनी को पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद विशाल। कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। अमर उजाला के शब्द हैं, कमल मध्य प्रदेश के नाथ, राजस्थान छत्तीसगढ़ के सीएम का फैसला आज। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कमलनाथ को कमान, राजस्थान में पेंच फंसा। हरिभूमि लिखता है, सिंधिया पर भारी पड़े कमलनाथ, राजस्थान छत्तीसगढ़ में सस्पेंस बरकरार। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कसने को भी समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मेहुल के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। राफेल सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में दूसरे दिन का कोई कामकाज न होने पर अधिकांश समाचार पत्रों ने सुर्खी दी है। देशबंधु की सुर्खी है, राफेल राम मंदिर पर संसद ठप। राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे की जांच पर उच्चतम न्यायालय के आज फैसला सुनाए जाने को भी लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हरिभूमि की सुर्खी है, राफेल डील जांच होगी या नहीं, आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मोबाइल नंबर अब 2 दिन में होगा पोर्ट, शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, दूरसंचार नियामक ट्राई के नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहक के आवेदन पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा को 48 घंटों में देना होगा अंजाम। देशभर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक, दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को देशबंधु ने प्रमुखता से छापा है। राजधानी दिल्ली को बारिश के कारण प्रदूषण से राहत मिलने और वायु गुणवत्ता में सुधार आने को नवभारत टाइम्स ने दिया है। पत्र लिखता है, बारिश और पहाड़ी हवाएं दिल्ली वालों के लिए बनी एयर प्यूरिफायर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज केंद्रीय बोर्ड की बैठक होगी। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने को असंवैधानिक ठहराया है। नई सरकार के गठन के प्रयास जारी हैं। और पर्थ में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। एडिलेड में पहला टेस्ट मैच भारत ने 31 रन से जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।